हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजवीर ने चांदनी को देखते ही उसके दिल में उसके लिए हवस जाग उठी थी। जैसे ही वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा, राजा बीच में आ गया। राजा ने चांदनी को अपनी पत्नी बताते हुए राजवीर से मिलवाया। राजवीर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया और केवल हल्की सी झूठी मुस्कान के साथ चांदनी से मिला। राजवीर को वो वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तब राजवीर ने राजा से कहा, तुम चाहो तो अभी भी मेरे पास काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, और वैसे भी अकरम के दोस्त होने के नाते पहले ही मैंने तुम्हें काम पर रखा था, तो तुम चाहो तो अभी भी मेरे पास काम कर सकते हो, मैं कोई ना कोई छोटा मोटा काम तुम्हें दिला दूंगा। राजवीर की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मुझे किसी तरह के काम की जरूरत नहीं है। मेरा अपना छोटा मोटा काम है, बिजनेस है, मैं वही कर रहा हूँ, यही काफी है मेरे लिए। और वैसे भी मेरा कोई ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, मेरे पास परिवार के नाम पर सिर्फ मेरी पत्नी चांदनी है, जिससे आप मिल ही चुके हैं, तो मुझे किसी और काम की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर सर, मैं खुश हूँ। राजा की बात सुनकर राजवीर थोड़ा झेंप गया। उसे अपनी बेइज्जती से महसूस होने लगी, क्योंकि राजा सही मायने में तो राजवीर का नौकर था, लेकिन आज उसका नौकर उसे मना कर रहा था कि उसे उसके काम की कोई जरूरत नहीं है, वो जहाँ है वो बिल्कुल ठीक और खुश है। ये बात राजवीर के अहंकार को ठेस पहुँचा रही थी। तब राजवीर ने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो, क्या बिजनेस है तुम्हारा? तब राजा ने कहा, वो सर मैं इस होटल में। अभी उसने इतना ही कहा था कि राजवीर बीच में हंसते हुए बोला, ओह अच्छा, तो तुम इस होटल में वेटर का काम कर रहे हो, और तुम्हारी पत्नी भी इस होटल में काम करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है, जहाँ तक मुझे लगता है? राजवीर ने राजा का मजाक उड़ाते हुए कहा। राजवीर की बात सुनकर चांदनी उसे गहरी नजरों से देखने लगी। चांदनी समझ चुकी थी कि राजवीर को ये जानकारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उसकी शादी राजा से हो गई है, क्योंकि चांदनी राजवीर की आंखों में अपने लिए हवस साफ देख सकती थी। तब राजा हंसते हुए राजवीर से बोला, नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों यहाँ पर जॉब नहीं करते हैं, दरअसल हम दोनों यहाँ के ओनर हैं, ये हमारा होटल है। जैसे ही राजा ने ये कहा, राजवीर हैरानी से राजा और चांदनी को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर कोई बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार राजा और चांदनी की ओर देख रहा था, फिर थोड़ा सा खांसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? ओनर, और तुम भी इतने बड़े होटल के? क्या तुम्हें सुबह से कोई मिला क्या, जो तुम मुझे बना रहे हो या पीकर आए हो? राजवीर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अपनी बात को साबित करने के लिए वो राजा से ये सब कह रहा था। तब चांदनी बीच में बोल पड़ी, राजवीर साहब, हमसे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम यहाँ के नौकर हैं या मालिक, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है ना? हम दोनों साथ बहुत खुश हैं, और हमें आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपको कभी हमारे होटल में आना हो तो हम आपको 20% डिस्काउंट जरूर देंगे नेक्स्ट टाइम, ओके? अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। तभी वो राजा की ओर मुंह करके बोली, डार्लिंग आप भी आ जाइए, हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऐसा कहकर राजवीर पर गहरी नजर डालती हुई चांदनी अपने केबिन की ओर चली गई। राजवीर उसे तब तक देखता रहा जब तक चांदनी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। चांदनी जिस केबिन में गई थी उसके कमरे के बाहर लिखा था, दिस इज ओनर केबिन। जैसे ही राजवीर ने ये पढ़ा उसके चेहरे पर हवा उड़ गई। राजवीर को लगने लगा कि उसकी आज बहुत बेइज्जती हुई है। फिर वो फीकी मुस्कान के साथ राजा से विदा लेता हुआ वहाँ से निकल गया। राजा भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखने लगा। वहीं दूसरी ओर मेहर ने ये पता लगाने की कोशिश की कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज आगे किस कंपनी से संपर्क करने वाली है, क्योंकि मेहर ने सोच लिया था कि अब कोई और किसी भी तरह का टेंडर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के हाथ में नहीं जाने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जल्दी ही अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके मेहर ने पता कर लिया कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज जल्दी ही रंधावा एम्पायर के साथ बिजनेस करने वाली है। कुछ सोचकर मेहर मुस्कुराने लगी और उसने महेश रंधावा की पूरी डिटेल अपने पास मंगवा ली और जल्दी ही उससे मिलने के लिए एक मीटिंग भी फिक्स कर ली। मेहर ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रंधावा इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट अगर किसी को मिलेगा तो सिर्फ ठाकुर इंडस्ट्रीज को मिलेगा और किसी को नहीं। कुछ सोचते हुए मेहर ने महेश रंधावा के साथ उसके फॉर्म हाउस पर एक मीटिंग फिक्स कर ली। इस बात की खबर अरमान को नहीं होने दी। उसने अरमान से सिर्फ इतना ही कहा था कि वो सब संभाल लेगी, और अरमान ने अपनी बहन पर यकीन भी कर लिया था, और करता भी क्यों ना। अब तक मेहर ही तो उसकी कंपनी को संभालती आई थी, अब अरमान सिर्फ राजवीर के पीछे लगा हुआ था। मेहर अगर बिजनेस संभाल रही थी तो अरमान राजवीर की डिटेल्स निकलवा रहा था। वो ये चेक करना चाहता था कि राजवीर का क्या अभी भी पुलिस में कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि अगर राजवीर का पुलिस में कनेक्शन रहा तो सबसे पहले अरमान ठाकुर उसका कनेक्शन खत्म करवाएगा, उसके बाद वो राजवीर को एक बेहद दर्दनाक मौत देगा, क्योंकि जोया के बारे में बोलकर राजवीर अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर चुका था। क्योंकि अगर पुलिस के साथ राजवीर का किसी भी तरह का कोई कनेक्शन रहा तो उसे हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अरमान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को इस काम पर लगा दिया था। अबीर सिंह राठौर के अबीर मेंशन लौटने की बात सुनकर जोया काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि अबीर के बिना रहने के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसे अबीर की पूरी तरह से आदत हो चुकी थी, लेकिन अबीर जोया को समझाकर अपने प्राइवेट जेट से अपने घर लौट चुका था। वहीं अबीर मेंशन में गजाला जी बड़े ही ठाट बाट सा रह रही थीं, और इतना ही नहीं, जब भी उन्हें मौका मिलता रिया पर टॉन्ट करने से वो बाज नहीं आती थीं। क्योंकि रिया और अक्रम वहीं रह रहे थे तो उन्हें लगता था कि वो फ्री में वहाँ खाना खा रहे हैं और बेकार में उसके बेटे की प्रॉपर्टी पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। इसलिए जब भी गजाला जी को मौका मिलता वो रिया को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती थी, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही रिया कुछ फल लेने के लिए किचन में आई, गजाला जी जो सोफे पर बैठी रिया को देख रही थीं, उनकी नज़र रिया पर पड़ी। जैसे ही रिया फल की प्लेट लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी गजाला जी ने उसे रोक दिया और बोलने लगी, आखिर कब तक तुम दोनों मियां बीवी यहाँ फ्री का खाना खाओगे? अरे चलो, मेरे बेटे ने तुम लोगों को दोस्त बना लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसके घर पर ही अपना डेरा जमा लो, और अब अपना औलाद भी पैदा करने जा रहे हो, उसको भी यहीं पैदा करोगी? क्या तुम लोगों को यहाँ से जाने का इरादा भी है या नहीं? क्या तुम लोग सारी जिंदगी यूं ही मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करोगे? ऐसा कहकर गजाला जी रिया के सामने जाकर खड़ी हो गई थीं।
तभी रिया ने गजाला जी से कहा, देखिए आंटी, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं ये हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते, समझी आप? और रही बात मेरे होने वाले बच्चों की, तो उसके बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आपने कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? समझ गई आप? रिया ने भी गजाला जी को डांटते हुए कहा। वो सब कुछ सह सकती थी, लेकिन अपने बच्चों के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकती थी, क्योंकि जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था उसके बारे में गजाला जी कैसे कह सकती थीं। रिया का जवाब सुनकर गजाला जी का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि इस मामूली सी लड़की ने उसकी बेइज्जती कर दी है। जब से गजाला जी यहाँ आई थीं, वो हर रोज कुछ न कुछ कहकर रिया को चिढ़ाती रहती थीं। लेकिन आज जब गजाला जी ने उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में बात की तो रिया को काफी बुरा लगा, इसलिए वो गजाला जी को जवाब देने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि अकरम रिया को साफ साफ मना कर रहा था कि वो चाहे कुछ भी कहे, उन्हें कहने दो और इग्नोर करके अपना काम करो, क्योंकि अभी हम लोग उनसे किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। रिया ने भी अकरम की बात मान ली थी, लेकिन आज अपने बच्चों के बारे में बात सुनकर रिया को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने गजाला जी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। गजाला जी ने जैसे ही सुना कि रिया उसे काम पर रखने को कह रही थी, तब गजाला जी ने रिया के हाथ से फल की प्लेट छीनकर उसे फेंक दिया और बोली, एक तो तू मेरे घर में रहती है और मुझे जवाब देती है। ऐसा कहकर गजाला जी ने अपना हाथ रिया को मारने के लिए उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो रिया को मार पाती, पीछे से आकर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।